جو پہلے کلاس ہے 27 اپریل 1968 روحانی بچوں کے ساتھ روحانی باپ روحان کر رہے ہیں, وہ کہیں گے راج یوگ سکھائے رہے ہیں. روح کی روح کے ساتھ روحان اور راج یوگ سکھانا, اس میں باچا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ باچا کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دو کے سنسکار آپس میں ملتے ہیں, ایک کی دھشتی ماتر سے ہی دوسرے کو وائبریشن کیچ ہو جاتا ہے. کیا کہنا چاہتا ہے اور بات کو سمجھ لیتا ہے اور جواب بھی دے دیتا ہے. دھشتی بہت بات کرتی ہے, وائبریشن سے بھی باتیں ہوتی ہیں. روحانی باپ روحانی بچوں کے ساتھ روح رحان کر رہے ہیں, مانا راج یوگ سکھائے رہے ہیں. اس میں باچا کی درکار نہیں ہے. اور تم آئے ہی ہو بے حد کے باپ سے راج یوگ سیکھنے, لاسٹ اسٹیج میں جب تم بچے پرم دھام کو سچی پر اتار لیں گے تو وانی میں رہیں گے یا وانی سے پرے چلے جائیں گے؟ وانی سے پرے تو چلے جائیں گے, لیکن باپ کے ساتھ ساکار میں ہوں گے یا صرف نراکار میں ہوں گے؟ ساکار میں ہوتے ہوئے بھی وائبریشن سے نراکاری اسٹیج ہوگی, بولنے کی درکار نہیں رہے گی. نہیں تو پرم دھام کہا ہی جاتا ہے تب جب وانی سے پرے کی وائبریشن ہو. اس لیے بدھی چلی جانی چاہیے بے حد کے باپ کی طرف. یہ ہے پرماتم گیان آتماؤں کے پرتی. وہ ہوتا ہے جیو آتماؤں کا گیان. باچا میں لاتے ہیں, واچا میں آتے ہیں, واچا میں لے جاتے ہیں. واچا سے پرے کوئی نہیں لے جاتے. یہ ہے شالیگراموں کے پرتی بھگوان واچ. نہیں کہیں گے جیو آتماؤں کے پرتی. آتماؤں کو ہی سننا ہے. اس لیے کیا بننا ہے؟ آتما ابھیمانی بننا ہے. آگے تم تھے دیہ ابھیمانی. اس پرشوتم سنگم یوگ پر ہی باپ آ کر کے تم بچوں کو آتما ابھیمانی بناتے ہیں. جیو مانا جیوت, جیوت مانے کرم اندریوں سے کرم کرنے والی. اور آتما ابھیمانی ہوگا تو کرم اندریوں کا بھان رہے گا. کرم اندریوں کا بھان ہی نہیں رہتا تو سنگم یوگ پر ہی باپ آ کر تم بچوں کو آتما ابھیمانی بناتے ہیں. کہ چلے جاتے ہیں تب آتما ابھیمانی بنتے ہو. برہما کے تن میں آئے آتما ابھیمانی بن گئے کیا؟ نہیں. ऐसे भी नहीं कि बाप चले गए। ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया तो भी बाप तो इसी सृष्टि पर विराजमान है, और वापस तब जावेगा जब तुम सब आत्माओं को आत्माभिमानी स्टेज में बना के जाओगे। आत्माभिमानी और देहाभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने समझाया आत्मा ही शरीर से पाट बजाती है, पड़ती आत्मा है शरीर नहीं पड़ता, परंतु देहाभिमानी होने के कारण समझते नहीं है आत्मा पड़ती है, समझते हैं शरीर पड़ता है, शरीर ही पढ़ाता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वो तो है निराकार, कोई साकारी स्टेज वाला तुमको पढ़ाने वाला नहीं है, और पढ़ने वाली आत्माएं भी निराकार है। क्या यहां तो पढ़ाई ऊंची स्टेज वाली है या नीची स्टेज वाली है? कैसी ऊंची स्टेज? ऐसी ऊंची स्टेज जिस ऊंची स्टेज में तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर हो जाता है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर, जब बेसिकली कट उतर जाती है तो सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। तब तक डायरेक्ट मां से नहीं, मां से ही सीखते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सीखते हो, लेकिन डायरेक्ट बाप से नहीं सीखते। उनका नाम है शिव, जिनसे सीखते हो उनका नाम शिव। क्यों नहीं कहा शिव शंकर? क्योंकि सिखाने वाला शंकर नहीं है, शंकर तो खुद सीखने वाला है, देवता है। शिव तो देवता बनाने वाला है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता है, और सभी आत्माएं कहेंगी मेरा शरीर, शिव बाबा ये नहीं कहेंगे ये मेरा शरीर। ये मेरा शरीर किसने कहा? आत्मा ने कहा, परमपिता ने तो नहीं कहा। बाकी की सभी जिस्मानी पढ़ाइयां हैं जो अनेक प्रकार की, उनमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और मैट्रिक बीए आदि कितने नाम हैं। इस पढ़ाई का तो एक ही नाम है, सहज राजयोग, और पढ़ाने वाला भी एक ही है। मुश्किल को सहज करने वाला एक ही है, और तो सब मुश्किल बनाए देते, सहज को भी क्या बनाए देते, मुश्किल बनाए देते हैं। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, और बाप ही आकर के पढ़ाते हैं, तो बाप को याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं है कि नाम रूप से न्यारा है, अगर नाम रूप से न्यारा हो फिर तो याद करने की बात ही नहीं आती। क्या नाम है? शिव। अर्थ क्या है? कल्याणकारी। कभी एक सेकंड के लिए 5000 वर्ष में अकल्याणकारी बन जाता हो? और आत्माएं अकल्याणकारी जरूर बनती हैं, लेकिन शिव कभी भी अकल्याणकारी नहीं बनता। तो नाम भी है रूप भी है, ये जो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो सो जैसे मनुष्यों का को पता पड़ता है शरीर पर, तो कहेंगे फलाना फलानी का शरीर है, वैसे शिव बाबा का तो नहीं है। और तो सभी के शरीर के नाम आदि हैं, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसकी आत्मा के ऊपर नाम हो, क्योंकि सबको शरीर मिलता है, शरीर से ही सबकी आत्माओं की पहचान होती है पार्ट के द्वारा। मेरी भी पहचान तभी ही होती है जब मैं आकर के शरीर में पार्ट बजाता हूं, परंतु अंतर क्या है? मैं जिस शरीर के द्वारा पार्ट बजाता हूं उसको मेरा शरीर नहीं कहता, मेरा शरीर है ही नहीं, मेरा कोई ममत्व नहीं है, इसलिए कहता हूं कि सभी के शरीर के नाम आदि हैं। और नाम किस आधार पर पड़ते हैं? काम के आधार पर पड़ते हैं। मेरा भी काम है, जिस काम के आधार पर मेरा नाम पड़ता है, क्या काम है? है कल्याण करना, ये कल्याण का कार्य है। और कोई भी आत्मा सदाकाल नहीं बजा सकती, परंतु शरीर के द्वारा ही कल्याण करता हूं, परंतु उस शरीर में मेरा ममत्व नहीं है। ये शरीर उनका नहीं है, और भगवान एक ही होता है, दस बीस होते भी नहीं है। जैसे हिंदुओं ने दिखाई दिया है क्या, 24 अवतार, दशावतार, जैनियों ने भी दिखाई दिए, कितने 24 तीर्थंकर भगवान दिखाई दिए, वो तो एक ही है। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार, इतने अवतार कहते आए हैं, तो उनको कुत्ते बिल्ले ठिक्कर में कह देते हैं, जैसे खुद भक्ति मार्ग में भटके हैं, बाप कहते हैं मुझे भी बहुत भटकाया है, ड्रामा अनुसार उनकी बातचीत सभी शीतल है, समझाते हैं मेरे ऊपर सभी ने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानी की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, बाप कहते हैं मेरे सिवाय और कोई भी निष्काम सेवा नहीं कर सकता, क्यों? सबको अपनी अपनी कामना रहती है, सबको अपना अपना रथ है, सबको अपना अपना स्वार्थ रहता है। मेरा कोई भी शरीर ही नहीं है तो कोई स्वार्थ भी नहीं है, तो निष्काम सेवा मैं करता हूं। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अब मैं सेवा करता हूं निष्काम, तो मेरे को क्या फल मिलता है? चाहिए ही नहीं, क्योंकि कामना ही नहीं है। कामना होती है तो फल मिलता है, कामना ही नहीं है तो कोई फल भी नहीं बनता। अभी तुमको तो फल मिल रहा है, ज्ञान भी है, भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर, तो क्या फल देंगे? ज्ञान फल देंगे। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान होता ही नहीं है, वो तो सभी कर्मकांड के शास्त्र हैं। कर्मकांड के शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहा जाता, वो जो भी कर्मकांड हैं वो कहां की यादगार है? इस समय संगम युग में जो तुम बच्चों ने कर्म किए हैं, चाहे ज्ञान युक्त कर्म किए हैं, चाहे अज्ञान युक्त कर्म किए हैं, उनकी यादगार कर्मकांड बनाए गए। आधा कल्प तुम कर्मकांड आदि करते आए हो, अभी ये ज्ञान तो पढ़ाई है, वहां आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुम्हारी कोई पढ़ाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का तो अहम ऑब्जेक्ट होता है, वहां तुम्हारी पढ़ाई का कोई अहम ऑब्जेक्ट था ही नहीं। पढ़ाई पढ़ी जाती है तो कोई लक्ष्य लेकर पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट था क्या? कोई गुरु लोग एम ऑब्जेक्ट देते थे कि तुम मनुष्य से देवता बनेंगे? भक्ति करते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, पूजा करते रहो, रिजल्ट क्या निकलना? गुरु लोग भी शरीर छोड़ गए और चेले भी शरीर छोड़ते रहे, एम ऑब्जेक्ट तो कोई को प्राप्त होती है। और यहां तो बाप गारंटी करते हैं, अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करेंगे तो इसी जन्म में तुम नर से नारायण जैसे देवता बनेंगे। और ये पढ़ाई मिलती ही एक बार है, वो शास्त्रों की पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर पढ़ते चले आए, और पढ़ाई का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। हाँ, ये निकला और ही पतित होती चले गए, और ही दुर्गति होती चली गई। क्यों दुर्गति होती चली गई? क्योंकि वो शास्त्रों की पढ़ाई एक से नहीं पढ़ी, पढ़ाने वाले अनेक गुरु थे, शास्त्र लिखने वाले अनेक गुरु हुए। रावण से कोई बैठ करके पढ़ाई पढ़े, एक मुख एक बात सिखाएगा और दूसरा मुख दूसरी बात बताएगा। एक मुख की निकली हुई बात दूसरे मुख में जावेगी तो बदल जावेगी या एक ही रहेगी? बदल जाती है। वहां तो दस दस मुख पढ़ाने वाले, दस दस धर्मों के दस दस मुखिया, तो एक बात तो हो नहीं सकती। सत्य तो एक होता है या अनेक होते हैं? सत्य तो एक ही होते हैं। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही एक बार आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाते, ऐसे नहीं हर युग युग में आते हैं, 24 बार अवतार लेते हैं या 10 अवतार लेते हैं, नहीं, एक ही बार संगम युग पर आते हैं और फिर खुद चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि ठहरते भी हो, कोई प्राप्ति की आशा हो, नहीं, ये ज्ञान है, सच्ची जानकारी है। भक्ति मार्ग में तो जो भी गुरु ने सिखाया वो सब अज्ञान, इसलिए उसका नाम है भक्ति। भागते रहो, भागते रहो, जन्म जन्मांतर भागते रहो। आधा कल्प तुम भक्ति करते आए, ठिकाना तो कुछ भी नहीं मिला, और यहां तो तुमको क्या ठिकाना मिला? एक बाप, दूसरा कोई ठिकाना नहीं, पक्का ठिकाना मिल जाता है। अभी जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है, पता नहीं भक्ति न करने से ये होता है, या कहीं मर पड़ते हैं या कहीं अनिष्ट हो जाता है, ऐसे भक्ति मार्ग में समझते हैं ना। बाप कहते हैं वास्तव में भक्ति में तुमने दुर्गति को पाया, अभी भी अगर भक्ति करते रहे, एक के प्रभाव में न चले, औरों से प्रभावित होते रहे, तो प्रभावित मानो प्रजा बनते रहेंगे। राजयोग सीख करके राजाई के संस्कार नहीं आने, प्रजा की सदगति कहेंगे क्या है? यहां लक्ष्य क्या दिया जाता है? नरसे नारायण बनने का लक्ष्य दिया जाता है। बाप प्रजा योग सिखाने नहीं आए हैं, क्या सिखाने आए हैं? राजयोग सिखाने आए। प्रजा पद पाना कोई पद नहीं होता है, प्रजा में भी भले क्वालिटी होती है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, परंतु प्रजा वर्ग में जाना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। तुम बच्चे कहते भी हो आप आकर पतितों को पावन बनाकर सती यति में ले जाकर ले चलो, या कि आकर के ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा के तन से चले जाओ, फिर हम सदगति को पाते रहेंगे। नहीं, आप आकर के क्या करो, ज्ञान सुनाकर नहीं चले जाओ, पतितों को पावन बनाओ, सदगति में ले चलो। भक्ति अलग है, भक्ति से दुर्गति होती है, ज्ञान अलग है, ज्ञान से सदगति होती है। भक्ति एक से आती है, वो भक्ति अनेकों से आती है, और ज्ञान एक से आता है। भक्ति से रात होती है, और वो भी आधा कल्प की रात होती है। ज्ञान से दिन होता है, लेकिन ज्ञान तो सिर्फ एक ही जन्म में होता है, और उसकी प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। भक्ति आधा कल्प चलती है, और प्रारब्ध भी दुर्गति की आधा कल्प चलती है। तो बोला टाइम तो दोनों का एक ही है, राम राज्य बेहद का और रावण राज्य भी बेहद का कहेंगे। भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती रहती है। अभी तुम योगी बनते हो तो दुनिया की वृद्धि होगी, जैसे अभी तक वृद्धि होती आई 63 जन्मों में, ऐसे वृद्धि होगी या धीमे धीमे बढ़ेंगे? गति धीमी हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितने प्रबंध रचते हैं। मनुष्यों की बुद्धि कम हो ये तो बाप का काम है, वृद्धि, और कोई दुनिया में मनुष्यों की या कीट पशु पक्षी पतंगों की वृद्धि करने से रोक ही नहीं सकता। असली फैमिली प्लानिंग तो बाप ही आकर के कराते, वो तो कितना प्रयत्न करते हैं इस बात के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, दुनिया की वृद्धि तादाद न बढ़े। बाप कहते हैं ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। क्या? फैमिली प्लानिंग करना या दुनिया की आबादी करना ये कोई मनुष्यों का काम नहीं है। इसलिए मुसलमान कभी भी फैमिली प्लानिंग को नहीं अपनाते। क्या? और देशों में और राज्यों में और धर्मों में फैमिली प्लानिंग के लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन मुसलमान कभी भी फैमिली प्लानिंग की चिंता नहीं करते, इसलिए उनकी वृद्धि भी बहुत जास्ती होती जाती है। वास्तव में फैमिली प्लानिंग का काम कोई जानते भी नहीं है, न दूसरे धर्म वाले जानते हैं, न इस्लामी जानते हैं, न कोई जानता है। फैमिली प्लानिंग की जो ज्ञान है वो ज्ञान तो सिर्फ बाप के पास है, तुम अभी जानते हो। इतनी बड़ी सृष्टि है, उनको कम करना ये तो बाप का ही काम है, बाप आते ही कम करने के लिए, नहीं तो इतने वर्षों से देश देशांतर में फैमिली प्लानिंग का काम चल रहा है, दुनिया की आबादी कम हो रही है क्या? तो दुनिया जानती ही नहीं है फैमिली प्लानिंग का काम किसका है। बाप बताते हैं, ये जो मैं गीता सुनाता हूं ये गीता ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है, वो गीता पढ़ते पढ़ते तो दुनिया की आबादी कितनी ही बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि बाबा आओ और आकर के सृष्टि कम करो, वो लोग तो कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर के सृष्टि की आबादी कितनी ही कम कर देते हैं, कितनी कम कर देते हैं, 500 करोड़ की आबादी कम हो करके कितनी रह जाती है, है? 100 गुनी से भी कम हो जाती है। 1 करोड़ आबादी हो तो कहेंगे 10 गुनी कम हो गई, 10वां हिस्सा रह गई। अब 500 करोड़ में से कितने बचेंगे, 9 लाख, वो भी आत्माएं तो होंगी 9 लाख, शरीर 9 लाख नहीं होंगे, तो कितनी कम हो गई। कितना हिस्सा रह गई आबादी, आबादी का 200वां हिस्सा भी आबादी नहीं रहती है, कितनी ही आबादी कम कर देती है, बाकी थोड़े मनुष्य रह जाते हैं। सभी आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़कर परमधाम वापस चली जाती है। कितनी आत्माएं हैं जो अपना शरीर टोटली नहीं छोड़ती है, 4.5 लाख आत्माएं ऐसी हैं, कुछ न कुछ शरीर के साथ उनका हिसाब किताब रहता है। तो कोई आत्माएं होती हैं जिनका हद के नाटक में देरी से पार्ट होता है, कोई का आदि से अंत तक पार्ट होता है, कोई बीच में पार्ट बजाना शुरू करते हैं और कोई अंत में आते हैं पार्ट बजा के फिर सब इकट्ठे वापस जाते, ये भी बेहद कठिन है। जो देरी से आते हैं वो जरूर घर से भी देरी से आते हैं, चलो हमारा तो पार्ट ही नहीं है, हम देर से भी जावेंगे तो कोई बात चलेगी नहीं, चलेगी, अपना धंधा पूरा करके फिर पिछाड़ी में आ जाते हैं। तो पिछाड़ी वाले अपना धंधा दोरी आदि भी करते हैं ना, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वो पिछाड़ी में ही आते हैं। पहले पहले जो शुरू के पाठधारी हैं वो आते हैं, और वो आते हैं सतयुग के आदि में, फर्स्ट सीन में आ जाते हैं। और पिछाड़ी में देखो तो सभी आ जाते हैं, डार टारियां पत्ते आदि पिछाड़ी तक आते रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को ये बेहद के ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं। इस समय ही तुम बच्चे या सवेरे सवेरे याद में बैठते हो तो जितना अमृत वेले की याद में बैठेंगे अलर्ट होकर के, उतना विचार सागर मंथन भी चलेगा। सवेरे याद में बैठना चाहिए, ये ड्रिल है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। अभी याद की बात पकड़ो, योग अक्षर छोड़ दो। इस योग अक्षर में मुझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। बाप कहते हैं अरे बाप को याद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है क्या? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। विनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे, अविनाशी को याद करेंगे अविनाशी बनेंगे। तो बिंदी को याद करें ना, बिंदी अविनाशी नहीं है? हाँ फिर हाँ, बिंदी तो सभी अविनाशी है। कीड़े मकोड़े की बिंदी वो भी अविनाशी है, पता कैसे लगेगा? हम कौन सी बिंदी को याद करते हैं? इसलिए पार्टिकुलर साकार भी चाहिए, और ऐसी साकार आत्मा चाहिए जो पतित से 100% पतित से 100% पावन बनने वाली हो, ऑलराउंड पार्टीधारी हो। ऐसे पतित में उस पावन बाप को याद करेंगे तो हमारी भी स्टेज पावन बनेगी। बाप है ही पतित पावन, क्या एक नहीं है? क्या है, है? बाप के टाइटल क्या है, सिर्फ पावन या पतित पावन? बाप एवर प्योर नहीं है? बाप है ही पतित पावन, पतित में आता है और उसको पावन बनाकर जाता है, और वो जिसको बनाकर जाता है वो सारी सृष्टि का बीज है। जैसा बीज होगा वैसा झाड़ भी तैयार होता है। साधु संत आदि सभी गाते रहते हैं हे पतित पावन आओ, गाते तो हैं परंतु बेचारे जानते नहीं है कि पतित पावन क्या होता है। तालियां बजाते गंगा में जाकर स्नान करते रहते, भाषण आदि करते हैं, तो उनको जो अपने हैं सभी को ले जाते, उनको आमदनी बहुत होती है, वो जाते हैं आमदनी के लिए, कफनी पहनी सन्यासी बने, फिर गृहस्थी लोग उनको सभी कुछ पहनाते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा तो कुछ भी नहीं होता। इन बातों से भक्ति मार्ग में जो साधु सन्यासियों की ये कथा कहानी बताई, ये है कहां की बातें असली? कैसे है? हाँ, अभी भी बहुत गीत गाते हैं भगवान के, हे पतित पावन आओ, गाते हैं ना? तो जिसको पतित पावन कहते हैं उसको पहचानते हैं, पहचानते तो नहीं, तालियां बजाते हैं। तालियां बजाना मैंने ताल में ताल मिलाना, गीत बहुत गाते हैं, डांस बहुत करते हैं, लेकिन अर्थ को नहीं जानते। कितने जाते हैं गंगा में स्नान करने, गंगा क्या है, है? पतित पावनी है गंगा। अगर पतित पावनी गंगा में स्नान करने जाते हो तो खुद भी पावन बन जावे। पतित पावनी गंगा में जाते कहाँ है, वो तो पानी की गंगा में स्नान करने जाते। पानी की गंगा माना
मनन चिंतन मंथन नहीं,
हाँ, जिसे पानी में मनन चिंतन मंथन की बात ही नहीं, उस गंगा का कनेक्शन ज्ञान सागर के साथ है ही नहीं। ज्ञान सागर से अगर कनेक्शन हो तो उस पानी का मंथन करने से, उस सागर का मंथन करने से कुछ रतन भी निकले, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे रतन निकले जो जीवन को ही परिवर्तन कर देवे। उनकी आमदनी बहुत होती है। क्या गंगा में स्नान करने क्यों ले जाते हैं, कि जिन भक्तों को ले जाते हैं, जिनके पंडे पुजारी बनते हैं, उनसे पैसे पैसे खूब मिलते हैं, खूब बड़ी बड़ी महलमारियां अटारियां कंक्रीट की बनाते रहते हैं, बड़े बड़े मठ पंत बन जाते हैं, कफनी पहनी, क्या रंग बिरंगे कपड़े पहने, सन्यासी बने, इनकी बात हुई। तथाकथित ब्राह्मणों की ही बात हो रही है, वो ही ये शूटिंग करते हैं साधु सन्यासियों की। गृहस्थी लोग उनको सभी कुछ पहनाए देते हैं, क्या वो कपड़े कहां से आते हैं, गृहस्थियों से ही आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। भले बड़े बड़े मठ पंथ बनाते हैं, कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, लोगों से मान मर्तबा बहुत मिल जाता है, लेकिन फायदा, फायदा कुछ भी नहीं। वो अनेक प्रकार के गुरु हैं, एक धर्म के नहीं है, अनेक धर्मों के आधार मूर्त हैं। सदगुरु तो एक ही है, उस सदगुरु को बेहद का बाप कहा जाता है। वो बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। अगर कहें कि सर्वव्यापी है, ठिक्कर भित्तर में है, फिर सदगुरु कैसे बना? ठिक्कर भित्तर सदगुरु को सदगति करेगा क्या? ठिक्कर भित्तर क्या करेगा? अरे ठिक्कर भित्तर खुद ही ठोकरें खाता रहेगा। भित्तर माने भीत, दीवाल, खुद भी विघ्नों में अटकता रहेगा, दूसरों को भी विघ्नों में अटकाता रहेगा, खुद ठिकाना नहीं पाएगा और दूसरों को भी ठिकाने, दूसरों की बुद्धि को भी एक ठिकाने नहीं लगावेगा। ये सभी भक्तों की भक्ति की बातें हैं, जो बातें बाप ही समझाते हैं। इन बातों से मनुष्यों की दुर्गति हुई है, भक्ति की बातों से, ऐसे नहीं कि डुरापा देने है कि भक्ति मार्ग का पाठ ही क्यों रखा। अरे ये भक्ति मार्ग का पाठ बना बनाया है या रखा गया है? बना बनाया है, ये डुरापा नहीं देना है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा के आदि मध्यंत का राज समझाते, यह है वैरायटी धर्मों का, वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष। तुम बच्चों की बुद्धि में ये बातें याद है, सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है सभी पाठधारी है। क्या एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका पाठ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नुदा हुआ नहीं है। जानवरों की तो बात ही नहीं है, कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब भी निकालते हैं, कितने इतने मनुष्य हैं, हिसाब करते हैं कितनी वृद्धि होती है, वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, निकालते हैं ना। अभी इतने करोड़ बढ़ते जाएं तो इतनी जगह कहाँ है? तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ, आता हूँ तो लिमिटेड नंबर पूरे होने को होते हैं। जब सभी आत्माएं आ जाती हैं और हमारा ऊपर घर खाली हो जाता है, खाली होने को आता है, तो मैं आ जाता हूँ। तो मेरे होते बाकी जो भी बचत आत्माएं ऊपर में हैं, मेरे पीछे पीछे सभी आ जाती हैं। कब तक? जब तक मैं पार्ट बजाऊं। मेरे पार्ट बजाने के बाद जब मेरे वापस जाने का टाइम होता है, फिर कोई भी आत्मा ऊपर नहीं रहती। ये झाड़ कब सूखता नहीं है, चलता ही रहता है। पिछाड़ी में जब वहां कोई भी नहीं रहता है तो फिर ये पुराना झाड़ खत्म हो जाता है। फिर सभी जावेंगे। नई दुनिया में देखो कितने थोड़े हैं, अभी तो कितने ढेर के ढेर हैं, और शरीर तो सभी के बदलते जाते हैं या जीव के त्यों बने रहते हैं। सभी आत्माओं के शरीर बदलते जाते हैं, वो भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते आए। ये वर्ल्ड ड्रामा का कैसे चलता है सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकता। और बच्चों में भी इस वर्ल्ड ड्रामा को समझाने वाले बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। वेद का नाटक कितना बड़ा है, कितने इसमें समझने की बातें हैं। वेद का बाप तो सभी ते ऊंचे है, और वो ज्ञान का सागर है, और बाकी क्या है? हैं? ताल तलैया भी हैं, नहरें भी हैं, नदियां भी हैं, बड़े बड़े सरोवर भी हैं, लेकिन ज्ञान सागर एक ही बाप है। सबसे बड़े सरोवर का नाम क्या रखा है? ज्ञान मान सरोवर। वो कहाँ है? हमारे पहाड़ पर बताते हैं कि मानसरोवर झील है, उसमें हंसों का निवास होता है, और पानी इतना निर्मल होता है, पारदर्शी, कि नीचे तक सारा ही देखने में आता है। तो बाप है अनलिमिटेड, बाकी सब है लिमिटेड। ये वेद साथ साथ ही बनते हैं, जास्ती तो कुछ नहीं बनेगा। तुम तो ये लिखते जाओ, जो बाप सुनाते हैं तुम ये लिखते जाओ तो कितने कागज हो जाएंगे? शास्त्र तो लिमिटेड है, लेकिन ये तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, लंबी चौड़ी गीता बन जावे। शुरू से लेकर जो समझाते हैं वो तुम सभी लिख करके छपाते रहो तो इस मकान से भी बड़ी गीता हो जाती। इतनी बड़ी गीता को कोई उठाए भी नहीं सकता। उठाना माना? इतने ज्ञान को कोई धारण भी नहीं कर सकता, छप भी नहीं सकती। इसलिए ये बढ़ाई दे दी है। क्या क्या गायन है कि सागर को स्याही बनाओ, सारे जंगल को कमल कलम बनाओ, तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। गायन भी है, चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया, अर्थात क्या कर दिया है? सुखा दिया। अरे ज्ञान सागर शिव बाबा कभी सूख सकता है क्या? हाँ, फिर दारुण कर लिया, सुखा दिया, एक ही बात है। अरे जिस प्रजापिता में प्रवेश करते हैं वो ही जैसे अगस्त ऋषि हो गया, उसने सारा ही ज्ञान सागर का ज्ञान जल पी लिया और फिर चिड़िया जो है उसको खाना शुरू करती है, तो प्रजापिता का पार्ट कैसा हो जाता है? अहंकारी हो जाता है, देह अभिमानी बन जाता है, ज्ञान उड़ जाता है या ज्ञान रह जाता है? सारा ज्ञान प्रजापिता का उड़ जाता है, क्या बन जाता है? आत्माभिमानी से पूरा देह अभिमानी सांढा बन जाता है। शास्त्रों में ये कथा आई है या नहीं आई है? कहां की कथा है? संगम की कथा है। सारे सागर को सुखाए दिया, तो निराकार की बात है या साकार की बात? साकार की बात है। वो तो सभी दंत कथाएं बना दी हैं, असली बात तुम्हारी बुद्धि में आती है। तुम बच्चियां सब चिड़ियाएं हो क्या? चिड़ियों के सामने एक बोरा दाना डाल दो और उड़ती आएंगी ढेर की ढेर और सारा सारा सुखा देंगी, सारा चट कर जाएगी। ज्ञान सागर तुम सारा ज्ञान हप कर लेती हो क्या? है ज्ञान सागर लेकिन सारा ज्ञान तुम हप कर लेती हो। अब बताओ, निराकार ज्ञान सागर के ज्ञान को कोई हप कर सकता है? नहीं। और एक के द्वारा हप करने की तो बात ही नहीं है। तुम सब हजम कर जाते हो ज्ञान सागर को। निराकार की बात है या साकार की बात है? कोई बहुत हप करते हैं और कोई थोड़ा हप करते हैं क्या? सार ज्ञान सागर को जिसका मिसाल दिया है कि तुम सब हप कर जाते हो, सारा हप कर जाते हो, तो एक हप कर जाता है या ढेर सारे मिलकर के हप करते हैं? ढेर सारे मिलकर के, कोई कम कोई थोड़ा। बाकी ऐसे नहीं है कि वो कोई चिड़ियाएं सागर को सुभावेंगी। चिड़िया माने स्थूल पंखों वाली चिड़ियों ने कोई सुखाया क्या? हैं? कौन सी चिड़िया? ये तो ज्ञान चिड़ियों की बात है, जो ज्ञान काम वो जो योग और ज्ञान के पंखों से ऊंची उड़ान उड़ती है। सभी बेकायदे कहानियां बनाई दी है, उनके अर्थ को कोई जानते नहीं। ये भक्ति मार्ग की कहानी है, अकल की तो बात ही नहीं। अकल की बात बुद्धिमानों की बुद्धि बाप आकर किस बताते हैं? मनुष्य कितने बेकार बन पड़ते हैं। इसलिए बाप ने कहा है जंगली जानवर बन पड़े। अभी तुम क्या से क्या बनते हो? अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको ज्ञान मिला है, तो तुम कितनी ही बातें जान गए हो। मनुष्यों को तुम समझाते हो तो भी मनुष्य विश्वास नहीं करते हैं क्या? तुम ये शास्त्रों की बातें क्लियर करके उनको समझाते भी हो तो भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, कि ऐसी चिड़ियाएं होती है, कि ऐसा कोई ऋषि होता है जो सारा सागर हप कर ले। कल्प कल्प तुम ये धंधा आदि करते हो। कौन सा धंधा है? इस सागर को हप करने का और सागर को फिर चिड़ियाओं के द्वारा हप कराने का और फिर क्या दिखाते हैं? पेशाब की धार में सारा सागर बाहर निकाल दिया तो खारी बन जाएगा या मीठा रह जाएगा? खारी बन जाता है। है कहां का आदमी? अरे वो आदमी कहां का कहा जाता है? फरक्काबादी। फरक्काबाद का नमकीन बहुत मशहूर है। वाणी कैसी है? नमकीन है या मीठी है? बहुत खारी वाणी है। तो तो कल्प कल्प तुम यह धंधा करते हो क्या? सारा मीठे सागर को क्या बना देते हो? खारा बनाकर बाहर निकाल देते हो। तुम पढ़ाई भी पढ़ते हो, जो भी पढ़ाई पढ़ते हो उसमें कोई कम जास्ती नहीं हो सकती। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं वो प्रारब्ध बनती जाती है। एक जन्म की प्रारब्ध बनती है या 84 जन्मों की प्रारब्ध बनती है? है 21 जन्म की नहीं बनती? 21 जन्म की भी बनती है। श्रीमत के अनुकूल जितना चलते हैं तो 21 जन्म की बनती है, और मनमत उसमें जितना मिक्स हो जाती है उतना फिर 63 जन्मों का हिसाब किताब बन जाता है। मनमत मिक्स करें या मनुष्यों की मत मिक्स करें तो भी क्या बनेगा? तो भी 63 जन्मों का हिसाब किताब बनता है। हरेक समझते हैं कि कितना हम पुरुषार्थ करते हैं और कैसा पुरुषार्थ करते हैं, कितना पद पाने लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इम्तिहान पास करते हैं, यहां भी ऐसे ही है। तुम जानते हो सूर्यवंशी भी बनते हो और चंद्रवंशी भी बनते हो, कौन है? कौन सूर्यवंशी बनते हो, कौन चंद्रवंशी बनते हो? है 84 जन्म लेने वाले सूर्यवंशी भी बनते हैं और चंद्रवंशी भी बनते हैं, कैसे? अरे सत्युग में भी हम सूर्यवंशी बनेंगे 4.5 लाख, और त्रेता में भी जाकर चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास हो पढ़ते हैं वो चंद्रवंश में चले जाते हैं। 4.5 लाख बच्चे बनेंगे 16 कला संपूर्ण। नई षष्ठी जब शुरू होगी तो उस नई षष्ठी की शुरुआत में वो 16 कला संपूर्ण वो बच्चे बनेंगे, बनेंगे तो, लेकिन किस तरह के बच्चे बनेंगे? है उतरती कला वाले बनेंगे। और उन्होंने चंद्रवंशी की शूटिंग कब की थी? बनेंगे तो त्रेता में, लेकिन चंद्रवंशी बनने की शूटिंग उन्होंने कब की? है संगम में भी कब? संगम तो 100 साल का, कब की? हाँ यज्ञ के आदि में ही उन बच्चों ने फेलियर होने की शूटिंग कर ली थी। ऐसे नहीं कि अंत तक फेल होते रहेंगे। अगर अंत तक फेल होते रहेंगे तो ये कौन क्यों कहा कि जिन्होंने अंत किया उन्होंने सब कुछ किया? कोई इन बातों को समझ भी नहीं सकता कि राम को ये बाण आदि क्यों दिए हैं, कब दिए हैं, किसने दिए हैं, वो बाण कौन से हैं? ज्ञान बाण है। कब दिए? ये ब्राह्मणों के लिए गायन है कि ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। यज्ञ के आदि में ही जो ब्राह्मण बने थे वो ब्राह्मण युद्ध करते करते शरीर को छोड़ दिया। ये माया भी युद्ध करते करते शरीर छोड़ने की बात है, तो पूर्व जन्म का ज्ञान उनको अगले जन्म में ऐड हो जाता है। राम को बाण मिले किस लिए? प्यासरों को मारते रहे और अपना राज्य स्थापन करते रहे। मारामारी की हिस्ट्री बनाई दी है शास्त्रों ने, स्थूल बातें बनाई दी हैं, ज्ञान की बातें, और उनको हद की बातों में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ओम शांति।